भजन संहिता 137, भजन 137 बंधुआई के समय का भजन है। ये भजन दाऊद की मृत्यु के कई वर्षों के पश्चात लिखा गया था। भजनकार बाबुल के बंदियों में से कोई एक था। भजन 137 पद 1 से लेकर 9 तक। बाबुल के नहरों के किनारे हम लोग बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। उसके बीच में मजनू वृक्षों पर हमने अपनी वीणाओं को टांग दिया, क्योंकि जो हमको बंधुए करके ले गए थे उन्होंने वहां हमसे गीत गवाना चाहा, और हमारे रुलाने वालों ने हमसे आनंद चाकर कहा, सियोन के गीतों में से हमारे लिए कोई गीत गाओ। हम यहोवा के गीत को पराए देश में क्यों कर गाए? हे यरूशलेम, यदि मैं तुझे भूल जाऊं तो मेरा दहना हाथ झूठ हो जाए। यदि मैं तुझे स्मरण न रखूं, यदि मैं यरूशलेम को अपने आनंद से श्रेष्ठ न जानूं, तो मेरी जीभ तालू से चिपट जाए। हे यहोवा, यरूशलेम के दिन को एदोमियों के विरुद्ध स्मरण कर, कि वे क्यों कर कहते थे, ढाओ उसको नेव से ढा दो। हे बाबुल, तू जो उजड़ने वाली है, क्या ही धन्य वो होगा जो तुझसे ऐसा ही बर्ताव करेगा जैसा तूने हमसे किया है? क्या ही धन्य वो होगा जो तेरे बच्चों को पकड़कर चट्टान पर पटक देगा? ये भजन बाबुल की बंधुआई को दर्शाता है। वहां उनसे कहा जाता था वे अपने गीत गाएं। गीत गाना यहूदी जीवन का मुख्य भाग है। एक चीज जो मुझे अच्छी लगती है कि आज भी उनका अपना संगीत है जिसमें जीवन है, और हर समय उनके संगीत उत्सव होते रहते हैं। मैं इब्रानी नहीं जानता, परंतु उनका संगीत सुनना मुझे अच्छा लगता है। बहुत बार हमने देखा कि वहां हमारा बस ड्राइवर और मार्गदर्शक शाम को साथ मिलकर गीत गाते हैं। संध्या में गीत गाना बड़ा ही उत्साहवर्धक होता है। इनमें अभिनय, ताल और उल्लास भरा होता है। परंतु सभा उपदेश्य की पुस्तक के अनुसार गीत गाने का समय है और गीत ना गाने का भी समय है। जब वे बाबुल में बंधुए थे और यरूशलेम के नष्ट होने के बारे में सोच रहे थे, तब देश की खुशहाली, आशीष, समृद्धि और परमेश्वर की भलाई के लिए गीत गाना कठिन था। इसलिए जब वे बाबुल में थे वे खामोश थे। हमने अपनी वीणाओं को मजनू वृक्षों पर टांग दिया। हम नहरों के किनारे बैठ गए और सियोन को स्मरण करके रो पड़े। यरूशलेम की अंतिम याद शहर से उठता हुआ धुआं था। भूतकाल में उन्होंने सुलेमान के भव्य मंदिर को ध्वस्त होते देखा और सूनापन जो उनके मनों में बैठ गया था उसको याद करके गीत गाना कठिन था। सबसे पहले भजनकार एदोमियों के विरुद्ध कहता है। एदोमी एसाव के वंशज थे। वे यहूदियों के जन्मजात शत्रु थे। उन्होंने कई युद्ध किए और जब कोई इसराइल पर आक्रमण करता था वे उनका साथ देते थे। जब भी कोई इसराइल पर उत्तर से आक्रमण करता तब वे भी दक्षिण से आक्रमण कर देते थे। जब बाबुल उन पर आक्रमण कर रहा था उन्होंने एदोम से आकर बाबुल को प्रोत्साहित किया कि वे यरूशलेम को नष्ट कर दे, ढाओ उसको नेव से ढा दो। इसलिए भजनकार कहता है, परमेश्वर तू उन्हें इसका बदला दे, उनकी इस मानसिकता का प्रतिफल उन्हें दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन में बाबुल के पतन की भविष्यवाणी है। इस कारण भजनकार बाबुल के द्वारा दिए गए घावों से कहराते हुए बाबुल के विनाश की बात जो रहा है। नए नियम में हमें अपने शत्रुओं से प्रेम करना सिखाया गया है। भजनकार के ये कथन परमेश्वर के कथन नहीं है, क्योंकि परमेश्वर दंड से कभी खुश नहीं होता। परमेश्वर लोगों पर या देशों पर न्याय लाकर कभी आनंदित नहीं होता। तो भी हम लोग चाहते हैं कि दुष्टों पर परमेश्वर का न्याय पड़े। हम न्याय के दिन की प्रतीक्षा नहीं करते, परंतु परमेश्वर दया दिखाता है, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है और वो करुणा दिखाने से आनंदित होता है। आपको याद है, परमेश्वर ने योना को अश्शूरों की राजधानी निनवे नगर भेजा था कि आने वाले न्याय के चेतावनी दे। योना वहां जाना नहीं चाहता था। क्यों? वो डरता था कि यदि वो वहां गया तो वे लोग पश्चाताप करेंगे और परमेश्वर उन पर दंड नहीं लाएगा। वो उन पर दंड आता देखना चाहता था। वो चाहता था कि निनवे मिट जाए। इसलिए परमेश्वर के न्याय की उनके विरुद्ध सहायता करने के लिए उसने तर्शीश को भाग जाना चाहा, ताकि वे पश्चाताप के लिए परमेश्वर की बुलाहट को न सुने। बाद में दबाव और अवरोध के कारण वो निनवे गया और उन्होंने टाट पहनकर और राख लगाकर परमेश्वर के सम्मुख पश्चाताप किया और परमेश्वर की दया उन पर हुई। इस प्रकार योना परमेश्वर से नाराज हो गया। वो बाहर चला गया और एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कहा, ठीक है प्रभु, मुझे मिटा दे। परमेश्वर ने उनसे कहा, क्या बात है? क्या तेरे लिए नाराज होना ठीक है? योना ने कहा, मैं जानता हूं कि तू दयावंत है। मैं जानता था, मैं डर रहा था कि ऐसा ही होगा। वे लोग पश्चाताप करेंगे और तू उन्हें मिटाएगा नहीं। और वो नाराज था, क्योंकि परमेश्वर ने उन्हें दंड नहीं दिया, परंतु परमेश्वर दंड देने में उतावला नहीं है। मैं सोचता हूं बहुत बार हमारे मन में परमेश्वर के प्रति गलत धारणा होती है कि परमेश्वर खड़ा हुआ प्रतीक्षा करता रहता है कि कब उसे मौका मिले, और वो हमारी पहली गलत चाल पर हमें लठ मारे। ऐसा नहीं है। परमेश्वर चाहता है कि आप पर दया करे, परंतु जब जब आप क्षमा मांगे, वो चाहता है कि आपको क्षमा करें। ठीक है, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं। वो कहता है कि आप कहो, ओ परमेश्वर, मुझे क्षमा कर, क्योंकि उसकी करुणा सदा की है। इसलिए भजनकार वास्तव में बाबुल पर आने वाले निश्चित विनाश को दर्शाता है, परंतु ये वास्तव में परमेश्वर की धारणा नहीं है। जब न्याय आता है, परमेश्वर का हृदय रोता है। हम देखते हैं कि यीशु यरूशलेम शहर को देखकर रोया था। क्यों? क्योंकि यरूशलेम शहर पर न्याय आने वाला था। लूका 19 अध्याय 42 पद, क्या ही भला होता कि तू, हां तू ही, इसी दिन में कुशल की बातें जानता, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिप गई है। पद 44, और तुझ में पत्थर पर पत्थर भी ना छोड़ेंगे, क्योंकि तूने वह अवसर जब तुझ पर कृपा दृष्टि की गई ना पहचाना। वो आने वाले न्याय को देखकर रोया था। क्या ये खुश होने की बात है? ठीक है, हम तुम्हारे साथ भी वैसा ही करेंगे। तुमने मेरा इनकार किया, तुमने मुझे क्रूस पर चढ़ाया, हम तुम्हें देखेंगे। हम तुम्हें फांसी पर चढ़ाएंगे और देखेंगे कि तुम्हें कैसा लगता है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो रो रहा था, क्योंकि उनके कामों ने परमेश्वर के दंड को बुलाया है। वो उन पर आने वाले दंड के कारण रो रहा था। मुझे निश्चय है कि जब भी परमेश्वर को दंड देना होता है, उसका मन दुखी होता है।